शांति। परम प्रिय अव्यक्त बाप दादा के सभी अति प्यारे प्रिय बहनों और भाइयों, आज हम आप सभी विशेष अव्यक्त मिलन के लिए यहां इकट्ठे हुए हैं। हर वर्ष सब तरफ के भाई बहने रिफ्रेश होने के लिए आते हैं। इस बार विशेष हमारे कर्नाटक जोन के भाई बहने विशेष पधारे हैं, सबका स्वागत है। ईश्वरी सेवा का भी पाठ कर्नाटक का है और फिर साथ साथ अधिक से अधिक भाई बहने कर्नाटक से आए हैं। और देखा गया है कि स्थापना के कार्य में जो कार्य बाबा ने हैदराबाद सिंध से शुरू किया, एक नई शुरुआत मनुष्य को देवता बनने की राह दिखाना, मनुष्य को अपने सच्चे स्वधर्म की पहचान कराना, मनुष्य आत्माओं को ये महसूस कराना कि वे सभी एक ही परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं। भक्ति में मानते सब हैं, किस भी धर्म को ले लो, यही कहते हैं हम एक पिता की संतान हैं। कहते जरूर हैं, प्रैक्टिकल में उसको जीवन में उतारने का कार्य नहीं करते हैं। तो जब से शिव बाबा ब्रह्मा तन में पधारे 82 साल हो गए, आने से ही बाबा ने हम सबको एक ही मैसेज दिया, आप सब मेरे रूहानी बच्चे हो, आपस में रूहानी भाई और बहने हो, आत्मा रूप में भाई भाई हो। ये संदेश कहने में बड़ा सहज है, बहुत सिंपल है। पहले दिन ही ये बात सुनने को मिलती है, आप आत्मा हो, आप शिव बाबा के बच्चे हो, हम सब आत्माएं एक ही पिता की संतान हैं। फिर चलते चलते कभी कभी तो आज की मुरली अनुसार भी कह लो, अन्य जो बाबा की मुरली सुनते हैं उसके अनुसार भी कह लो, क्लास में सुनते हैं, हाथ उठाते हैं, क्लास पूरा होते सेंटर से जब बाहर जाते हैं ना, तो क्या होता है, बाहर की जो बातें हैं, बाहर का जो वातावरण है, उसके प्रभाव में आ जाते हैं। वो बात वहीं रह जाती है, लेकिन बाबा के इस संदेश को कहो, ईश्वरी ज्ञान की पहली पहली शिक्षा कहो, इसको अगर हम आप सभी अपना लेते हैं, ऐसा निश्चय बुद्धि बन जाते हैं कि कुछ भी हो हम इस बात को कभी ना भूलें कि हम आपस में रूहानी भाई और रूहानी बहने हैं, भाई और बहने हैं, क्योंकि हम सब किसके बच्चे हैं, किसके बच्चे हैं, ब्रह्मा बाबा के बच्चे हैं या शिव बाबा के बच्चे हैं? ब्रह्मा बाबा के बच्चे हैं, शिव बाबा के पोतरे हैं, ऐसे ग्रैंड चिल्ड्रन। तो शिव बाबा के अनादि अविनाशी आत्मा रूप में बच्चे हैं और ब्रह्मा बाबा के जीव आत्मा के रूप में बच्चे हैं। और ये पहचान कितने समय के बाद मिली है? हाँ, मेरे को दिखा रहे, पांच उंगली दिखा रहे हैं, 5000 साल के बाद फिर से पहचान मिली है। तो भाइयों और बहनों, हम सब बाबा के बच्चे, जैसे एक पिता के बच्चे आपस में सगे भाई बहन कहलाते, सगे, जिनको ईश्वरी ज्ञान है तो वो बाबा के सगे बच्चे हैं। हम सब बाबा के सगे बच्चे आपस में कितने टाइम के बाद मिले हैं? इस रूप में, इस पहचान से एक दो से जो मिलते हैं, 5000 साल के बाद फिर से मिले। इसलिए मैं देखता हूं, जब एक दो को देखते हैं, एक दो के सामने जाते हैं, तो ये नहीं सोचते हैं ये कर्नाटक से आए हैं, ये तेलंगाना से आए हैं, ये नेपाल से आए हैं, ये पंजाब से आए हैं, ये राजस्थान से आए हैं, ऐसा कोई भी सोचते हैं आप? एक दो को देखने से ही, हाँ, गुजरात से आए हैं, यही मन में आता है, कहां से भी आए हैं, पर बाबा के बच्चे हमारे बहने हैं, हमारे भाई हैं, दूसरा नहीं है कोई भी। ये बड़ी ऊंची भावना है। ऐसी भावना अगर हर एक के दिल में रहे, आप उसमें बहुत बहुत रूहानी प्यार रहेगा, ईश्वरी प्यार रहेगा। और आज संसार में किस चीज की जरूरत है? सारी दुनिया में जगह जगह पर, छोटे लेवल पर भी, बड़े लेवल पर भी, नेशनल लेवल पर भी, इंटरनेशनल लेवल पर भी कॉन्फ्रेंसेस क्या होती हैं? शांति कैसे प्राप्त? कोई तो विश्व शांति की बात कर लेते हैं, शांति कैसे मिले, आपस में भाईचारा कैसे हो? तो बाबा ने उसका जवाब दिया, अगर ये बात सीखनी हो तो ब्रह्मा कुमारी इसके पास जाकर के सीखो। ब्रह्मा कुमारी बहनों ने व ब्रह्मा कुमार भाइयों ने अच्छी तरह से इस बात को समझ लिया कि हम हैं ही अनादि आत्मा रूप में भाई भाई, और ब्रह्मा बाबा के अलौकिक बच्चे होने के नाते भाई और बहने हैं, और फिर इतने समय के बाद आपस में मिले। जल्दी जल्दी मिलते तो शायद इतना प्यार ना भी रहता। कितने टाइम के बाद मिले, फिर से उंगली दिखाओ, पांच उंगली दिखाओ, 5000 साल के बाद मिले हैं। तो आप सोचिए, 5000 साल के बाद आपका छोटा भाई या बड़ा भाई गुम हो गया हो और फिर से मिल जाए तो आपके दिल में कितनी खुशी होगी। बहुत खुशी होगी। कभी भी किसी को देखते हैं तो बड़ा मन खुश होता है। मैं तो रोज यहां देखता हूं, पैदल करता हूं या तो बैठ करके एक्सरसाइज कर रहा हूं, बहनें आती हैं, भाई आते हैं, विश करते हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है उस समय। इतना अच्छा लगता है क्योंकि वो पहचान है कि हम बाबा के बच्चे फिर से मिल रहे हैं। इस भावना को सदा कायम रखना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। दुनिया के अंदर, लौकिक दुनिया के अंदर, लौकिक परिवारों में भी वो उच्च भावनाएं नहीं रहती हैं। उसका कारण है, सभी जानते हैं, कौन सा युग चल रहा है अभी, कौन सा युग चल रहा है। सतयुग चल रहा है, त्रेता चल रहा है, द्वापर चल रहा है या कलयुग चल रहा है। ब्राह्मण सभी कौन से युग में है, पुरुषोत्तम संगम युग में, लेकिन बाकी सारा संसार किस में है, वो तो कलयुग में है। और कलयुग नाम ही तब आया है जहां पर कलह कलेश है, स्वार्थ है और पांचों विकार अच्छी तरह सबके मन में समाये हुए हैं। इसलिए जब ईश्वरी ज्ञान लेते हैं तो पहला लेसन ही मिलता है मनमना भव। बाबा का हुक्म है, बाबा का फरमान है, बाबा का संदेश है कि मन मेरे साथ लगाओ। किस लिए? इसीलिए जो मन के अंदर जो नेगेटिविटी है, जो 5 विकार हैं समाये हुए, जिसके कारण मनुष्य आत्माएं दुखी हैं, अशांत हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, छोटे लेवल पे भी कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा मारा मारी कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, तो वो सब अशांति का कारण बन जाता है। इसलिए बाबा ने आकर के पहला संदेश ही दिया, देशैत दे के सर्व संबंधों से बुद्धि योग निकाल कर स्वयं को आत्मा निश्चय कर मुझ पिता परमात्मा के साथ मन लगाओ। जब आप मन लगाएंगे पिता परमात्मा के साथ तो मन में आएगा कि पिता परमात्मा प्रेम का सागर है। तो हम आत्माएं आपस में किस तरह से व्यवहार करेंगे? परमात्मा के बच्चे आपस में व्यवहार कैसे करेंगे? फिर प्रेम के सागर के बच्चे, मास्टर प्रेम सागर, आपस में बहुत प्यार से व्यवहार में आएंगे। शांति के सागर के बच्चे क्या करेंगे? सिर्फ संदेश देंगे शांति का? शांति का संदेश देंगे, पर संदेश देने से पहले क्या करेंगे? स्वयं शांत स्वरूप होंगे, शांति का पुंज बन जाएंगे, शांति की शक्ति अपने में धारण करेंगे और शांति की सर्च लाइट सब तरफ फैलाएंगे। तब तो कहेंगे कि हाँ, बाबा ने जो कहा है मन मना भाव, उसको ठीक से समझ करके, उसका स्वरूप बन करके और अपनी शांति की शक्ति चारों तरफ फैलाएंगे, प्रेम की शक्ति चारों तरफ फैलाएंगे। जहां शांति है, जहां प्रेम है, वहां तीसरा क्या मिलता है? फिर आनंद मिलता है, आत्मिक आनंद, सच्चा आनंद, टेम्परेरी नहीं। टेम्परेरी हंसने बैलने की बातें होती हैं, एक दो के साथ थोड़ा हंसते बैलते हैं, कुछ जोक्स एक दो को सुनाते हैं, वो नहीं। लेकिन रूहानियत की जो आनंद की बात है, उसके अनुभव में रहते हैं, एक दो को देख के मुस्कुराते रहते हैं, खुश रहते हैं, ऐसी खुशी सदा कायम रखने के लिए बाबा का ये संदेश पहला पहला कभी भूलना नहीं चाहिए। मन मना भाव, और दूसरा कौन सा है आगे शब्द? मध्याजी भाव। मन मना भाव होने से मध्याजी भाव होते हैं। मध्याजी रूप है जो सर्वगुण संपन्न है, 16 कला संपूर्ण है, संपूर्ण निर्विकारी है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, अहिंसा परमो धर्म है। विष्णु का स्वरूप आपके सामने लाइए, चाहे महालक्ष्मी को देखें, चाहे विष्णु को देखें, एक तरफ से माता दिखेंगी, एक तरफ से पिताजी दिखेंगे, लेकिन और किसी को ये गुण नहीं दिए जाते। तो जब ऐसी हमारी स्थिति हो, मनसा के अंदर कोई ऐसी बात ना आए जो अशांत कर दे, थोड़ी भी शांति गई तो आप सोच सकते हो हलचल हो जाएगी। साइंटिस्ट भी क्या कहते हैं, आप यहां पर ऐसे एक उंगली हिलाते हैं तो आप मानो सारे यूनिवर्स के अंदर इसका इफेक्ट पहुंचता है। बड़ी सूक्ष्म बात है। और इसी बात को आप सोचिए, बाबा ने हम बच्चों को बहुत बड़ा कार्य दे दिया कि आपके याद की शक्ति से योग बल से को परमात्मा पिता के साथ मन लगा के जब योग का अभ्यास करते हैं, याद का अभ्यास करते हैं, उस समय जो आपके प्रकंपन है वो सारे विश्व में शांति स्थापन करने में मदद करते हैं। अनेक आत्माएं जो शांति खोज रही हैं उनको वो प्रकंपन जाकर के शांति प्रदान करते हैं। तो कितनी बड़ी सेवा कर रहे हैं आप, चाहे आप कर्नाटक में बैठे हैं, चाहे आप शांतिवन में बैठे हैं, चाहे आप विदेश में चले गए हैं। कई भाई बहने मिलते हैं आजकल, विदेश से भी आए हुए हैं, कहां पर भी हैं, सबका मन किसके साथ लगता है? सोर्स के साथ, जहां से शांति मिलती है, जहां से सच्चा प्रेम मिलता है, जहां से रूहानी शक्ति मिलती है, वो सोर्स है एक सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा, जिनको हम सभी प्यार से, बहुत प्यार से बोलते हैं बाबा। शिव बाबा भी कहते हैं तो थोड़ा ऐसे लगता है कोई दूर है। बाबा ने कहा नहीं, दिल से इतना ही सोचो, मेरा बाबा, बस मेरा बाबा जैसे सोचते हैं तो अपनेपन की भावना रहती है। मेरा बाबा कहा तो मेरा ईश्वरी परिवार हो गया। ईश्वरी परिवार का हर एक भाई, हर एक बहन मेरे भाई हो गए, मेरी बहन हो गई, तो आपस में क्या हुआ? सच्चा सच्चा ईश्वरी प्रेम, उसकी वर्षा होती रहेगी और कुछ नहीं रहेगा। एक दो को प्रकाशमणि दादी कहती थी, साकार बाबा भी कहते थे, अव्यक्त बाबा भी कहते थे, एक दो को मिठाई खिलाओ, दिल खुश मिठाई खिलाओ, जिससे दिल खुश हो जाए। और वो कौन सी मिठाई है? सबसे सहज मिठाई कौन सी है जिससे चेहरे पे रौनक आ जाती है, नैनों में खुशी आ जाती है? कौन सी मिठाई है? ओम शांति बोलो, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अपने चेहरे को अभी देखो, कितनी खुशी आ गई चेहरे पर। तीन बार ओम शांति दादी जो कहलवाती है वो उसके अंदर बड़ा राज है। जब पहली बार बोलते हैं तो थोड़ा धीरे से बोलते हैं, फिर दादी कहती है एक बार फिर बोलो ओम शांति, तो फिर अच्छी तरह से बोलते हैं। फिर जब तीसरी बार बोलते हैं तो आप देखो सबके चेहरे खिले हुए होते हैं, खुशी से जैसे भरपूर हो जाते हैं। इससे क्या सिद्ध होता है? इससे सिद्ध होता है जो भक्ति मार्ग की गीता में भी शब्द लिखे हुए हैं वो सत्य सिद्ध होते हैं, कि सो धर्म सुख देता है पर धर्म दुख देता है, आत्मा का स्वधर्म शांति है, आत्मा का स्वधर्म पवित्रता है। आत्मा के सच्चे स्वधर्म में जब मन टिक जाए, अथवा आत्मा अपने ही स्वधर्म में टिक जाए, तो बहुत आनंदमय महसूस करेगी। और अगर वो स्वरूप नहीं है, वो बार बार से सिर्फ कहें ओम शांति। कभी कभी आप देखेंगे जब थोड़ा बहुत बिजी होते हैं या थोड़ा मन में कोई हलचल होती है, आप कहेंगे किसी को ओम शांति तो कैसे जवाब मिलता है, ओम शांति। ऐसी बातें जब सोचते हैं तो अजीब सा लगता है कि ये बाबा के बच्चे, इतना इनका आपस में प्यार होना चाहिए, एक दो से कितना प्रेम से मिलें, एक दो का कितना रिगार्ड रखें। कई बार ऐसा सुनते हैं, सब कहते हैं बड़ों का रिगार्ड रखो, बड़ों का आदर करो, छोटों को प्यार दो, और जो आपस में समानता में हैं उनके लिए क्या करें। दुनिया के अंदर आप देखेंगे अधिकतर सब कहते हैं हम समानता में आए, समानता में आए, छोटे छोटे देश बड़े देशों के साथ समानता में, देश इतना सा है, समानता में आने के लिए बड़े देश के साथ हम उसके समान हों, और यूनाइटेड नेशंस ने उस बात को स्वीकार कर लिया, ठीक है छोटे बड़े देश सब एक समान है। प्रैक्टिकल में तो होता नहीं। इसी तरह से समानता में किस आधार से आ सकते हैं वो बाबा ने सिखाया कि जब आप अपने शांत स्वधर्म को पहचाने, सबसे पहले तो पहचान ही नहीं है, बड़ी मुश्किल तो ये है। विश्व के अंदर इस छोटे से सत्य को पहचाना ही बहुत कम लोगों ने, बहुत कम लोगों ने। ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि बिल्कुल नहीं पहचानते हैं, पर जो पहचानते हैं वो बहुत थोड़ी संख्या है। अगर इस बात को पहचान करके कि हम सब आत्माएं एक परमात्मा के बच्चे होने के नाते अपने स्वधर्म में कायम हो जाएं, जो सर्वात्माओं का धर्म है, भारतवासियों का है सिर्फ ऐसा नहीं है, यूरोपियन का है ऐसा नहीं है, मिडिल ईस्ट वालों का है ऐसा नहीं है, नॉर्थ ईस्ट वालों का ऐसा नहीं है, साउथ ईस्ट वालों का है ऐसा नहीं है, सबका एक सत्य धर्म है जो आत्मा का सच्चा स्वधर्म है। तो सत्य धर्म में अपने आप को अगर विराजित कर दें, मन बड़ा शांत में रहेगा, खुशी में रहेगा, आनंद में रहेगा, और फिर इसके साथ में देखेंगे कि हरेक के प्रति बहुत प्रेम भाव रहेगा, क्योंकि उस नजर से देखेंगे। अभी जो जिस नजर से एक दो को देखते हैं वो देह की नजर बदल जाएगी, जीवात्मा को देखेंगे। आत्मा को तो परमधाम में ही देखेंगे, लेकिन शरीर में जीवात्मा को देखेंगे। तो सभी जीवात्माएं सबका सच्चा सो धर्म शांति भी है, प्रेम स्वरूप भी है, आनंद स्वरूप भी है, और इन सब का आधार है पवित्र स्वरूप है। जब पवित्र स्वरूप कहते हैं तो ऑटोमेटिकली सिद्ध हो जाता है पांच विकार नहीं है। कभी भी किसी को देखो थोड़ा नाराज हो रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे उस समय? उस समय साइलेंस में बहुत मीठी मुस्कान से उनको देखें। तो जो गुस्सा करने वाला है वो ठंडा हो जाएगा। बाबा ने उसको कई प्रकार से कहा, उसको प्रेम की शक्ति के छींटे डालो, पानी के छींटे डालते ना, आग होती है उसको बुझाने के लिए क्या करते हैं? पानी डालते हैं। तो क्रोध को कहा गया है अग्नि, क्रोध को पानी नहीं कहते हैं। कोई है जो समझते हैं क्रोध करते हैं लेकिन वो पानी के समान ठंडे हैं? ठंडे रूप में कोई क्रोध करते देखा किसी को? हाँ, बच्चे करते हैं। आप सोचेंगे बच्चे कैसे करते हैं? बच्चे रूठ जाते हैं, मन में तो वो गुस्सा है पर वो बोल नहीं सकते जोर से, क्योंकि उनको डर है बोलेंगे तो थप्पड़ लगाएगा आगे से, तो फिर रूठ जाते हैं, बात ही नहीं करते। फिर उनको मनाते रहो, और मनाने में फिर क्या करते हो? गुस्सा करते हो? नहीं, फिर उसको प्यार ही देते हो, बहुत प्यार से, पुचकार से मनाएंगे उसको। तो एक सबसे बड़ी बात जो समझ में आई कि बाबा ने आकर के हम बच्चों को तीसरा नेत्र दिया है, ज्ञान का तीसरा नेत्र। तीसरा नेत्र अर्थात समझ दी है। कौन सी समझ दी है? आत्मा स्वरूप की समझ। हम अपने आप को स्वाभाविक रूप से, नेचुरल स्वरूप से आत्मा समझें, हरेक को आत्मिक दृष्टि से देखें और हरेक के साथ आत्मिक भाव से व्यवहार में आए, उसके अंदर बहुत प्यार और रिस्पेक्ट दोनों रहते। जो अपने से बड़े हैं उनको तो आदर देते ही हैं, पर उनको आदर के साथ उनको भी प्यार चाहिए। जो छोटे हैं बच्चे उनको प्यार देते हैं, पर प्यार के साथ बच्चों को भी आदर चाहिए, उनको भी रिस्पेक्ट चाहिए। नहीं तो कई बार बच्चों को ऐसे ही बस, अरे हट, क्या करते हो तुम, ऐसे ऐसे बोल करके बच्चों को चुप कराते हैं, वो नहीं ठीक है। बहुत प्यार से उनको भी डील करना है। अब भाई बात समानता की, जो समानता में है उनका क्या करें? आप देखेंगे अधिकतर जितनी टकराव होती है वो समानता में होती है। देखते हैं आप सभी मानते हैं इस बात को, जहां दोनों मैं ऐसे तो वो कहेंगे मैं ऐसे, तो फिर टकराते हैं। वहां पर भी बाबा ने कहा, मम्मा ने कहा, खास मातेश्वरी जी ने, उनको भी आपस में प्यार और रिस्पेक्ट से व्यवहार में आना चाहिए। अंग्रेजी शब्द जो ऐसे सुनते हैं ऐसे ही नहीं कहे गए हैं. गिव रिस्पेक्ट, गेट रिस्पेक्ट. गिव लव, गेट लव. छोटी छोटी बातें देखो. मशहूर है, लिटरेचर के अंदर बहुत पढ़ी होंगी लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई नहीं किया. तो अभी बाबा हम बच्चों को प्रैक्टिकली अपने जीवन को ऐसा सुंदर बनाने के लिए उसकी एप्लीकेशन जीवन में धारणा के रूप में करा रहे हैं, जिसको हम कहेंगे कि जिसने ईश्वरी ज्ञान की गहराई को समझ लिया और अपने जीवन में बहुत महीनता से इन चीजों को अपना लिया. कोई भी हो, हरे के प्रति रिस्पेक्ट. छोटे बड़े, और आप प्रैक्टिकल देखेंगे. हमारे भारत में कई बातें ऐसी हैं, भक्ति मार्ग में भी एक दो को नमस्ते करते हैं, सिर झुकाते हैं, पांव पड़ते हैं, भावना शो करते हैं. और उससे देखा गया बहुत वायुमंडल अच्छा बनता है. पर बाबा ने ये नहीं कहा आप पांव पड़ो. साकार बाबा अपने पांव को हाथ नहीं लगाने देते थे. नहीं, बाबा की तो बात ही और थी. बाबा कहते थे, बच्चे जो कुछ आप सुनते हो बाबा से, इससे बाबा का दिया हुआ ज्ञान है. शिव बाबा को तो अपने पांव है नहीं, आप किसको हाथ लगाना चाहते हो? ब्रह्मा बाबा तो आप बच्चों के जैसा है. ये भी शिव बाबा का ज्ञान लेकर के अपने आप को पुरुषार्थ में जहां तक हो सके सबसे आगे रखने के पुरुषार्थ में रहता है. तो इसलिए बाबा ने एक ही बात सिखाई कि नैनों से एक दो को आत्मिक भाव से देखो. जितना आप आत्मिक दृष्टि से एक दो को देखेंगे उसकी कॉन्शियसनेस रहेगी, स्मृति रहेगी. जितनी वो स्मृति स्वरूप में रहेंगे सहज रीति से आप बहुत सुंदर व्यवहार आपके जीवन में ला सकेंगे. सारे ज्ञान का सार आप देखेंगे, व्यवहार शुद्धि है. अगर व्यवहार शुद्धि नहीं है तो सारा ज्ञान लेने के बाद, भगवान को पहचानने के बाद, भगवान का बनने के बाद क्या हुआ? फिर योग्य नहीं बने. बाबा के योग्य बच्चे बनना है. जितनी योग्यता अपने में भरेंगे आप मानो उतना ही बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे. एक एक बाबा का बच्चा, जो योग्य बच्चा बनता है वो बाबा को सारे विश्व में प्रत्यक्ष करता है. आप जैसे आते जाते हैं, अभी कोई ट्रेन में आए, कोई प्लेन में आए, आपको दूसरी दुनिया के लोग सब देखते हैं, इनका व्यवहार कैसा है, इतना प्रेम से ये बात करते हैं, इतना शांति से ये चल रहे हैं, इतना मिल करके नयों नयों को भी कोई नई भी पहचानते तो भी उनके साथ कितना अच्छे ढंग से व्यवहार करते हैं, वो सब नोट करते हैं और उसके कारण आज ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के भाई बहने विश्व प्रसिद्ध हो गए हैं कि अगर शांति चाहिए तो इनके पास जाओ। प्रेम की बात चाहिए तो इनके पास जाओ, शांति की बात चाहिए तो इनके पास जाओ, चरित्र निर्माण करना है तो इनके पास जाओ। तो ये बात कोई छोटी नहीं है। आज के युग में ऐसे गुण संपन्न भाई बहने बहुत कम संख्या में दुनिया में, और उसमें अधिकतर तो बाबा के बच्चे ही हैं। बस इतना ही कहूंगा कि हम अपने बाबा का नाम रोशन तभी कर सकते हैं जब हम बाबा की शिक्षा को अच्छी तरह समझकर अपने जीवन में धारण करें और अपने जीवन से दुनिया को संदेश दें। शब्दों के द्वारा संदेश तो दे ही रहे हैं सभी, लेकिन व्यवहार के द्वारा भी बहुत संदेश बढ़ा जाता है। जितना आप प्यार से व्यवहार करेंगे दुनिया उसको याद करेगी, जितना आप दूसरों को रिस्पेक्ट देंगे दुनिया आपको सम्मान देगी। और ये प्रैक्टिकल देखा गया है कि बाबा की जो आज्ञाएं हैं, बाबा का जो हम सब बच्चों को क्या कहें हमेशा संदेश मिलता है मुरली के द्वारा, वो मुरली हमारे दिल में सदा छपी हुई रहनी चाहिए। हमारा जीवन मुरली का स्वरूप बनना चाहिए, इसके लिए अपने को देखना है और उसके लिए मुरली का अच्छी तरह से अध्ययन करना, जितना हो सके टाइम उसमें दें। बाबा कहते थे जितनी बार भी पढ़ सको, दादी प्रकाशमणि को देखते थे चार बार दिन में मुरली पढ़ती थी, चार बार। हमारे भाई बहने तो एक बार तो सुनते हैं, एक बार शायद पढ़ते भी होंगे, लेकिन चार बार का भाव यही है कि और बातों से अपने मन को फ्री रखते, व्यर्थ बातें अपने मन में ना आए, उसका एक आधार है मुरली। और मुरली के साथ साथ जैसे मुरली पढ़ेंगे तो मन में कौन याद आएगा किसकी मुरली है, बाबा की मुरली है, तो बाबा बहुत सहज याद आएगा, नेचुरल याद आपकी टिक जाएगी और बातों से मन हट जाएगा। क्योंकि ये देखा गया हर व्यक्ति अपने लाभ की बात सोचता है, हर ब्राह्मण भी अपने लाभ की बात सोचते हैं, तो लाभ मैटीरियल चीजों में तो देखा सभी ने, रुपया पैसा कपड़ा मकान वो सब उसकी लिमिट है, उससे जो सुख मिलता है उसकी लिमिट है, लेकिन ईश्वरीय ज्ञान और उसके साथ बाबा की याद और फिर सबको सुख देने का एक मन में संकल्प जिसको हम कहते हैं ईश्वरी सेवा, इससे जो आनंद मिलता है इससे अपरंपार खुशी मिलती है, अपरंपार, इसका कोई पारावार नहीं है। ये जिसने पहचान लिया वो बाबा के دل تخت نشین ہو جاتے ہیں، بابا کے مستق کی منی بن جاتے ہیں، بابا کے گلے کا ہار بن جاتے ہیں۔ تو ایسے بچے جو ہیں، اب بتائیے وہ کیسے، ان کے جیون میں کیا ہوگا؟ صدا پیار ہوگا، کسی سے نفرت نہیں ہوگی، کسی سے گھرنا نہیں ہوگی، کسی پر ناراض نہیں ہوں گے۔ یہ بہت ساری باتیں ہیں جو ہم نے آج ڈسکس کرنی تھی، وہ کر لی۔ جو مجھے لکھت دی ہوئی ہے، سب سے پیار، سب سے پیار اس کا آدھار کیا ہے؟ اس کا آدھار ایک ہی ہے کہ ہم سب ایک ہیں اور ایک کے ہیں، ایک بابا کے بچے ہیں، ایک پریوار کے سدسیہ ہیں، اس لیے ہم سب آپس میں بہت پیارے پیارے سکل دے بھائی بہنیں ہیں، یہ پکا کر لینا۔ اور پھر اس کے بعد ہے کسی سے ویر نہیں۔ وہ ویر کیسے رہے گا؟ ہے کسی سے ویر؟ پھر سوال ہی نہیں ہے۔ ایک چیز اور ہے اس شبد کو دیکھتے ہوئے، ویر شبد جو ہے، تو ویر کا کارن کیا ہوتا ہے؟ کارن ہوتا ہے کمپٹیشن۔ کس بھی روپ میں کمپٹیشن دیکھیں گے نا، تو وہاں ایرشا دویش ہونا بڑا سہج ہے، کس بھی روپ میں۔ تو بابا نے جس طرح سے ہم بچوں کو آگے بڑھنے کے لیے، باپ سمان بننے کے لیے جو سکھایا ہے کہ کمپٹیشن میں نہیں جاؤ، ایک دو سے کمپٹیشن نہیں کرو، لیکن ایک دو کے سیوا کو، ایک دو کے گنوں کو، ایک دو کی دھارنا کو اپریشیٹ کرو، اپریسیشن۔ آپ دیکھیں گے، آپ اپریسیشن کریں گے تو دوسرے آپ کی اپریسیشن بھی کریں گے، آپ کسی کی نندا کریں گے تو اس کا ریزلٹ کیا ملے گا؟ آپ کسی کی نندا کریں گے تو اس کی ریزلٹ کیا ملے گی؟ وہ آپ کی مہما تو نہیں کریں گے، پھر کریں گے؟ کوئی بہت مہان ہوگا جو ایسا کرے گا۔ ادھکتر تو ہر ایک، کوئی بھی ہو، ہر ایک یہی چاہتا ہے میرے لیے کوئی میری نندا نہ کرے۔ بابا نے بھلے کہا ہے، نندا ہماری جو کرے متر ہمارا سو، سنا ہے نا؟ کس لیے کہا؟ وہ بات ہی دوسری ہے، نندا جو کوئی اگر کرے اور ہم اپنے آپ کو سدھاریں، اپنے آپ کو چیک کریں، اگر کوئی اپنے اندر کمی ہے اس کو دور کریں، اس حساب سے ہم کہیں گے وہ ہمارا متر ہے۔ لیکن نندا کرنا شبد جو ہے، کسی کو بھی پسند نہیں ہے۔ تو نہ تو ہم کسی کی نندا کریں اور نہ کسی سے ہم کسی کی دوسرے کی نندا سنیں۔ یہ بہت دھیان رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایشوری پریوار بہت بڑا ہے، اور اتنے بڑے پریوار کا ایک جٹ ہو کے رہنے کا ایک ہی آدھار ہے، ایک دو کی جو اچھی باتیں ہیں، جو گن ہیں، آتمک بھاو ہے، اس پر ہی درشتی رہے، اس کی ہی اپریسیشن رہے۔ اور سب سے بڑی بات جو پہلی بات آپ کو سنائی، کتنے ٹائم کے بعد ملے ہیں آپس میں، ایسے ایسے کر رہے ہیں، 5000 سال کے بد ملے ہیں. ارے 5000 سال کے بعد کوئی اپنے پریوار کی بہن یا بھائی گم ہو رکھا ہو اور ہمیں مل جائے تو کتنی خوشی ہوگی. اس خیال سے دیکھیں گے، ارے 5000 سال کے بعد مل رہے ہیں. تو 5000 ورش کے بعد ملنے والے بھائی بہن تو ہمارے بہت پیارے ہیں، بہت سکیلدے ہیں، اور یوں کہیں گے کہ سب بابا کے دل تخت نشین بچے ہیں، ایسے بابا کے بچوں کے ہم بچے بھائی بہنیں ہیں. وشو میں دنیا اور کسی کے پاس یہ سوچ نہیں ہے، اس طرح کی سوچ صرف بابا کے بچوں کے پاس ہے کہ ہم سب بے حد ایشوری پریوار کے سدسیہ ہیں. بڑا گورو ہونا چاہیے. سب بھائی بہنیں جو بھی ہیں سب مل کر کے بابا کے پریوار کے بچے. تو بابا نے جو شروع میں ایک بات اخبار میں لکھائی تھی، لندن کی اخبار میں، Who is the richest in the world؟ دنیا میں سب سے زیادہ دھنوان کون ہے؟ تو بابا نے اس کا اتر اس سمے دیا تھا، خود ہی کوشچن کر کے پھر اتر بھی اس میں چھپوایا تھا، اوم منڈلی از دا ریچیسٹ ان دا ورلڈ. اور آج ہم دیکھتے ہیں سب سے شریشٹھ، سب سے رچ گیان جو ہے وہ بابا کے بچوں کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے. تو گیان کے حساب سے بھی رچ، اور ایشوری پریوار اتنا بڑا ہے، لاکھوں کی سنکھیا میں ہے، کوئی لاکھوں کہتا کوئی کروڑوں کہہ دیتے ہیں. تو آپ سوچئے اگر یہ جوائنٹ فیملی ہے تو سب کا ملا کے دھن کتنا ہو جائے گا. وشو میں کسی کے پاس اتنا دھن نہیں ہے جتنا برہما کماری ایشوری وشودیالے. تو بہت اپنا سر گورو سے اونچا رکھنا ہے، یہ ضرور ہے. ایک دو سے بہت بہت پیار سے چلنا ہے، ریسپیکٹ سے چلنا ہے، آدر سے چلنا ہے، اور نشے سے رہنا ہے کہ ہم بابا کے کلب پہلے والے بچے پھر سے آ کے ملے ہیں اور آپس میں بہت پریم سے مل جل کر کے بابا کا نام روشن کرنے کے نمت بننا ہے، نمت بننا ہے بس. اوم شانتی. ابھی 10 منٹ کیا کریں گے؟ چلیں بابا کے پاس، اویکت وطن میں چلیں. شیو بابا اور برہما بابا دونوں کو ہم سنمک دیکھیں، اور بابا کو میٹھی میٹھی اپنی ٹکلو ٹکلو بھاشا میں کہیں، بابا ہم کتنے بھاگیشالی ہیں جنہیں آپ نے کہاں کہاں سے آ کر کے سجاگ کیا، جاگرت کیا اور اپنا بنا لیا اور اپنے دل تخت پر بٹھا لیا. تو آج ہم آپ سے بابا آپ سے اتنا سمیپ رہ کر کے شکتی بھی بھریں گے، پریم بھی خوب بھریں گے، شانتی بھی بھریں گے. اور باپ سمان کیا ستھتی ہوتی ہے اس کا انبھو بھی کریں گے. تو اس بھاونا سے ابھی ہم سب بابا کی یاد میں 10 मिनट बैठेंगे। ओम शांति। सभी बहने भाई थोड़ा प्रेम से सीधा बैठ जाए, ऐसे झुक करके बैठेंगे तो थोड़ा सा डर लगता है, नींद ना आ जाए। बाबा कहता है आप लाइट हाउस हो, शांति के प्रेम के लाइट हाउस हो, तो लाइट हाउस हमेशा सीधा रहता है। और जितना ऊंचाई में रहेंगे उतना सारे विश्व के कोने कोने तक आपके प्रेम के शांति के शक्ति के प्रकंपन सबको जागृत करने में मदद करेंगे।
पांडव शिव शक्ति